ओम शांति। थोड़ा स्माइल देके ओम शांति। सभी फ्रेश है अभी, और अभी हम इस सत्र का आरंभ कर रहे हैं, तो अभी हमारा जो टॉपिक है रिज्यूविनेटिंग इमोशनल फिटनेस, भावनात्मक स्वस्थता को हम कैसे इम्प्रूव करें। तो इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करने से पहले 3 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे। जैसे कहा जाता है कि हर कर्म से पहले 2 पल के लिए प्रभु का ध्यान जरूरी है, तो हम 2 मिनट परमात्मा की स्मृति में बैठकर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ओम शांति। 2 दिन से हम कॉन्फ्रेंस में बहुत से बातों का आनंद ले रहे, बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं को हमने सुना, बहुत सारी बातें सीखी। 2 दिन से शिवानी बहन को भी सभी ने एंजॉय किया। तो हम सबको ये समझ में आ चुका है कि जैसे हम आजकल फिजिकल फिटनेस को जितना इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही इमोशनल और हमारा मानसिक फिटनेस जिसको हम कहते हैं, इन दोनों फिटनेस की भी इतनी ही इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। आज हम सभी चाहते हैं कि हम खुश रहें और सकारात्मक रहें, लेकिन सकारात्मक रहने के लिए हमें परमात्मा की मदद और अच्छे विचारों का प्रवाह हमारे जीवन में कितना आवश्यक है, ये हमें आध्यात्मिकता के द्वारा समझने को मिलता है। शिक्षा में आध्यात्मिकता एक बहुत बड़ी शक्ति है, और उस शक्ति के द्वारा हम इन चीजों को बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं। तो हमें बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस महान भूमि पर आकर, इस सुंदर प्रांगण में आकर, इतने सुंदर शांत पवित्र वातावरण में आकर, और इतनी सुंदर सुंदर बातें सुनकर अपने जीवन को हम रिज्यूनेट कर रहे हैं, और अपने जीवन का वास्तविक अर्थ समझकर खुश रहने का तरीका यहाँ आकर हम सीख रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक पर हमें बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफिकेशन देने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए और अपने अनुभवों से हमें भरपूर करने के लिए हमारे मध्य हमारी वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका, हमारी आदरणीय किरण दीदी जी, जो कि भोपाल से हमारे मध्य पधारी हैं, मैं उनका मंच पर आह्वान करती हूँ, नम्र निवेदन करती हूँ कि आप आए और हमारे मध्य अपनी स्थान ग्रहण करें। तो किरण दीदी का हम तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, आदरणीय किरण दीदी जी। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से नम्र निवेदन करती हूँ कि हमारे मध्य मंचासीन आदरणीय किरण दीदी जी का गुलदस्ता और बुके के बैच के द्वारा स्वागत करें। हम सभी तालियों के साथ सहयोग देंगे। स्वागत की श्रृंखला जितनी अधिक करे उतनी कम है। महान महान विभूतियां बड़े नसीबों से मिलती हैं, और जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व वाले धनी, जो आध्यात्मिकता के प्रणेता लोग, वो भी बहुत भाग्य से ही प्राप्त होते हैं। तो हम सभी भाग्यवान हैं जो कि आज हमें इस विषय पर हमें बहुत अच्छी तरह समझाने के लिए हमारे मध्य में आप उपस्थित हैं, और आपने पीजी डिप्लोमा इन एमएससी वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी से कंप्लीट किया है, और आप गोल्ड मेडलिस्ट इन मैथमेटिक्स से नागपुर से, आप एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका 23 वर्षों से आप अपनी सेवाएं दे रहे, भोपाल में आप कोलार ब्रांच को आप संभालती हैं, और आप बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी आपने अपना वक्तव्य दिया है, बहुत से सेमिनार देश विदेश में भी आपने अलग अलग संस्थाओं में भी दिया है, और आप एक कुशल व्यक्तित्व की धनी हैं। आपका सरल स्वभाव, आपकी मधुर वाणी आपकी पहचान है, और आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। तो अभी हम आपसे सुनेंगे आज के विषय पर, आदरणीय किरण दीदी जी।
ओम शांति। ये वक्त सेशन अटेंड करने के लिए थोड़ा सा टफ है, नहीं? अच्छा, आज जो बात करनी है वो है इमोशंस पर, इमोशंस के बारे में, मन के बारे में। हम सुन ही रहे हैं दो दिनों से। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर इमोशंस और वो कहाँ पर उत्पन्न होती हैं, क्या है इमोशंस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल फिटनेस, दैट मींस वी हैव बिकम वीक इन इमोशनल हेल्थ, तभी हमें इमोशनल फिटनेस की बात करने की आवश्यकता है। एंड देन रिजुविनेटिंग, दैट मींस फिर से जीवंत करना है इमोशनल फिटनेस को। ये सिद्ध करता है कि पहले कभी हम इमोशनली फिट थे, अब नहीं है, और फिर से इमोशनली फिट बनना है। पर क्या हम इसकी गंभीरता को समझते हैं? हमारी इमोशंस कैसे फ्लो होती हैं, उनका उद्भव कैसे होता है, वो हमारे जीवन के विभिन्न आयामों पर क्या असर डालती हैं। हमने मन की पावर को जाना, बहुत पहले ही सेशन में हार्नेसिंग द माइंड ऑफ पावर में आपने बात की, समझा कि मन की शक्ति से क्या क्या काम किए जा सकते हैं। पर वास्तव में मन की शक्ति माने क्या, किस चीज को आप कहेंगे मन की शक्ति, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय माइंड पावर? आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन माय माइंड, इज दैट माइंड पावर? आई कैन इन्वेंट मेनी थिंग्स, इज दैट माइंड पावर? व्हाट इज माइंड पावर? एबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी, बट स्टेबिलिटी इज द रिजल्ट। अ पावरफुल माइंड इज स्टेबल, बट व्हाट इज पावर ऑफ माइंड? कंट्रोल जी, पावरफुल थॉट्स। हाँ, माइंड की पावर इस बात में है कि फॉर एनी सिचुएशन, गुड और बैड, माइंड कैन गिव यू मेनी ऑप्शंस टू चूज हाउ वुड यू रेस्पॉन्ड। दैट इज इन फैक्ट माइंड पावर, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू हार्नेस इट। जैसे घोड़े के पास वो होता है ना पट्टा, और घोड़े को लगाम कसनी होती है। हॉर्स के पास पावर इतनी है कि आप पावर का यूनिट आपने हॉर्स पावर रखा है, लेकिन उसको हार्नेस करना होता है। इसी तरह मन के पास असीम शक्तियां हैं, लेकिन इसको भी हार्नेस करना होता है। शक्तियां क्या क्या है और मन क्या है, ये शॉर्ट में समझ लेते हैं। हम एक स्पिरिचुअल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आए हैं ये समझने के लिए कि व्हाट इन फैक्ट अ स्पिरिट इज। और आपने अपने मॉर्निंग सेशंस में समझा कि मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन क्षमताएं हैं स्पिरिट की, कॉन्शियसनेस की। मतलब कॉन्शियसनेस थॉट्स क्रिएट कर सकता है, एंड दैट एबिलिटी ऑफ द कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड माइंड। कॉन्शियसनेस कैन डिसाइड ऑन द थिंग्स व्हेन देयर आर मेनी ऑप्शंस गिवन टू द इंटेलेक्ट। बुद्धि को जब बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं तो बुद्धि डिसाइड करती है कि क्या सेलेक्ट करना है और क्या रिजेक्ट करना है। और फिर जो ऑप्शन बुद्धि ने सेलेक्ट किया, जजमेंट दिया, उस जजमेंट के आधार पर कर्मेंद्रियों को कर्म करने के लिए है ना निर्देश मिलता है। तो कर्म होता है और वो संस्कार बनता है। ये शक्तियां हैं जो हमारी मन बुद्धि और संस्कार, ये विभिन्न क्षमताएं हैं स्पिरिट की। अब मन को लेते हैं, केवल मन, माइंड के पास अपनी एक पूरी टीम है काम करने के लिए। माइंड में क्या क्या होता है? थॉट्स क्रिएट होते हैं, ऑप्शंस इसलिए मिलते हैं ना, बहुत सारे थॉट्स क्रिएट होते हैं। इमोशंस भी क्रिएट इसी में होते हैं, माना मन केवल विचार उत्पन्न करने की क्षमता को नहीं कहते। कॉन्शियसनेस विचार उत्पन्न कर सकता है, भावनाएं उत्पन्न कर सकता है, इमोशंस, देन एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड, वृत्तियां बनती हैं, और फिर ये जो भी चीजें उत्पन्न हो रही हैं, इससे जो भी एक्सपीरियंसेस गेन कर रही है सोल, वो हमारे मेमोरी बैंक में आ जाते हैं, मेमोरी, है ना। और ये चारों बातें जो आत्मा के अंदर, स्पिरिट के अंदर घटित हो रही हैं, इन सबको मिला के मन कहते हैं ना? तो टीम क्या क्या हुई? टी फॉर थॉट्स, ई फॉर इमोशंस, ए फॉर एटीट्यूड, एम फॉर मेमोरी, दैट इज माइंड, राइट। अब हम थोड़ा सा और इसका एक छोटा फ्रैगमेंट लेते हैं। हम विचारों के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, फिर आते हैं इमोशंस पर। विचारों की शक्ति के बारे में आपने जाना कि संकल्प से सृष्टि बनती है, ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, ये कहा जाता है। संकल्प से सिद्धि, ये भी आपने सुना, माना संकल्प अच्छे हैं तो सफलता है। इमोशंस क्या है? कोई संकल्प, कोई थॉट हमने क्रिएट किया। हु इज द क्रिएटर? आई एम द क्रिएटर, मैं आत्मा विचारों को उत्पन्न करती हूं। आई द सोल क्रिएट द थॉट, दैट थॉट वंस क्रिएटेड फिर वो बार बार मेरे अंदर चल रहा है, वंस ट्वाइस थ्राइस, ऐसे कोई थॉट तीन बार चार बार और 300 बार तक चलता ही गया, मतलब रिपीटेडली अगर एक थॉट मेरे अंदर चल रहा है, देन इट बिकम्स माय इमोशन, भावना बन जाती है। और कोई भी कर्म जो होता है वो केवल विचार के आधार पर नहीं होता, उसमें भावना ऐड होती है तब वो कर्म होता है। इसको थोड़ा और बेहतर समझते हैं। जैसे झंडा है, आपने देखा होगा ना, फ्लैग हॉस्टिंग में हम जाते हैं बार बार, झंडा होता है तो झंडे का, फ्लैग का कपड़ा होता है ना, फिर जब आप उसको फहराते हैं तो झंडा किस दिशा में फहरता है, वो कपड़ा किस दिशा में जाता है? जिस दिशा में हवा चलती, हवा नहीं है तो वो ऐसे बस लटका हुआ है। यहां पर ये जो कपड़ा है ये विचार है, और ये हवा जो है ये है इमोशन। हवा डिसाइड करेगी कि कपड़ा किस दिशा में फहरेगा। इसी तरह विचार हैं, लेकिन भावना डिसाइड करेगी कि कर्म किस दिशा में होगा। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। जैसे यहां हम बहुत समय से सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कि थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए। सो नाउ आई लर्न दिस लेसन एंड आई गो बैक टू माय प्लेस, से माय इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन में मैं जाती हूं या जाता हूं, और वहां जाकर मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आता हूं जिस व्यक्ति ने कभी कभी मेरे साथ बहुत खराब खराब कुछ कर दिया है। मे बी मेरी रेपुटेशन खराब की है, या मेरे बारे में कुछ गलत बातें फैलाई हैं। अब मैं स्टाफ रूम में हूं और वो भी आ रहा है, हिज कमिंग टू द स्टाफ रूम। अब अंदर दो चीजें एक साथ चलेंगी, क्या चलेगा? एक कि भावना बनी हुई है कि इसने खराब किया, वो भावना में आ गया है क्योंकि उसने बहुत समय पहले मेरा बहुत ही नुकसान किया हुआ है, तो वो भावना में है। लेकिन अब मैं यहां से सीख कर पहुंची हूं कि आई शुडंट क्रिएट नेगेटिव थॉट्स, तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरा विचार पॉजिटिव हो। तो मैं बार बार मन में दोहराने की कोशिश करूंगी कि नहीं, जो है हो गया, पास्ट इज फिनिश्ड, लेट मी पुट अ फुल स्टॉप, रात गई, बात गई, मेनी मोर थिंग्स। अब विचार पॉजिटिव है, भावना नेगेटिव, थॉट पॉजिटिव, इमोशन नेगेटिव विल लीड टू नेगेटिव रिजल्ट। अब क्या होगा, आपके चेहरे पर जो भाव है और आपके अंदर जो भावनाओं का आवेग है, विचारों का आवेग नहीं होता, भावनाओं का आवेग होता है, वो ज्यादा जल्दी ट्रैवल करके पहुंचता है उस तक। अब मैं मुंह से शब्द कितने भी अच्छे बोलूं, लेकिन रिलेशनशिप का क्या होगा, वो रिलेशनशिप कभी भी अच्छी रिलेशनशिप नहीं बन पाएगी, हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं बन पाएगी। और इसलिए इमोशंस जब ऐसे नेगेटिव होते हैं तो दे आर वीक इमोशंस। व्हेन आर वी मोस्ट वीक इमोशनली, हम कहां सबसे ज्यादा इमोशनली वीक होते हैं जी? टॉर्चर्ड बाय समवन, हुम कैन टॉर्चर यू मोस्ट, फैमिली एंड फ्रेंड्स, मीन्स दोज हु आर क्लोजर टू यू, मतलब जहां आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो अगर कुछ करते हैं तो आप ज्यादा जल्दी टॉर्चर होते हैं, ऐसा है ना? अच्छा, भावनाएं जुड़ी हैं तो आप क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। इस अटैचमेंट के कारण हम वीक हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब कहा जाता है तो मोह, दिस अटैचमेंट मेक्स अस वीक। हाउ? एक तो अटैचमेंट की रिजल्ट हमेशा दुख और बेइज्जती है। डू यू नो दैट? जैसे अभी मैं इस माइक से आपसे बात कर रही हूं, राइट? ब्रदर ने माइक लगा दिया, आई फील वेरी गुड। अब मुझे लग रहा है मैं इससे बात करती रहूं करती रहूं, तो एक अटैचमेंट है मेरी माइक के साथ। अब मैं बोलती जा रही हूं, टाइम गॉट ओवर, बहुत समय के बाद भी मेरा बोलना समाप्त नहीं हो रहा, तो व्हाट विल हैपन? ब्रदर आएगा और जबरदस्ती भी माइक लेकर जाएगा, या जो कोई नेक्स्ट स्पीकर होगा वो जबरदस्ती भी मुझे उठाएगा ना, बेइज्जती। और क्योंकि अब मेरा इससे अटैचमेंट है तो इसके जाने का दुख, तो दुख, अपमान, बेइज्जती, ये है रिजल्ट। तो क्या हम ये चाहते हैं जीवन में? हमारी भावनाओं के साथ हम कितना कैजुअली चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, वी डू नॉट हैव दैट सेल्फ अवेयरनेस। हमारी भावनाओं के कारण हमको कोई भी इमोशनली एक्सप्लॉइट कर सकता है, एंड दे कैन गेट द वर्क डन व्हाट दे वांट अस टू डू। स्पाउस को भी आप देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चे मदर को कुछ कहते हैं कि हमें ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, मदर कहेगी पापा को अभी नहीं बोलना, मूड ठीक नहीं है। फिर कब मूड ठीक है, मतलब कब उनकी भावनाएं सही हैं, दैट टाइम दे विल गेट देयर वर्क डन फ्रॉम यू। ये फैमिली में है तो वो बहुत नुकसान वाला कुछ नहीं होगा, पर बाहर अगर समझ लो, आजकल बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, IIM से, IIT से बड़ी बड़ी कंप्लेंट्स आ रही है। इंदौर में IIM है, वहां का केस बताती हूँ। अ चाइल्ड, एक बच्चा जो घर से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख के जाता है, तो वो समझता है कि मुझे सबके बीच में बहुत पॉजिटिव रहना है, अच्छा रहना है। अब वहाँ जो लोग आए हैं वो कंपटीशन का जो स्पिरिट है वो उनको इतना नेगेटिव बना चुका है कि उसकी पॉजिटिविटी के कारण बहुत सारे प्रोफेसर्स, इंस्टीट्यूट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जो बाकी बच्चों के अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है। एंड सिंस द प्रोग्राम्स देयर इन आर ऑल कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम्स, बच्चों को ही सब चलाना है वहां पर, बिकॉज दे आर बीइंग टॉट मैनेजमेंट। तो वो अब हर जगह कोशिश करेंगे उसको नीचा दिखाने की। उसको नीचा दिखाने के लिए अगर ऐसा कोई तरीका नहीं मिला तो दे आर मेकिंग हिम इमोशनली इन्वॉल्व, क्योंकि बच्चा सिंपल है। तो हम बच्चे को घर में बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, पर बाहर जब वो जाता है तो ये भी चीजें हैं। द वैल्यूज विच यू टॉट देम एट होम एंड द वैल्यूज विच दे आर फाइंडिंग आउटसाइड, दे आर ऑल एंटी वैल्यूज। अब उसको समझ में नहीं आता कि हाउ टू आई मेक, क्या मैं कैसे ये चीजों को कंपाइल करके और अपने आप को सेफ रखूं। रीजन, जो वैल्यूज हमने पढ़ाई है उसका कंप्लीट कंसेप्ट नहीं है, नंबर वन। सेकेंडली, वैल्यूज को एक्सिक्यूट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए जो इनर स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, वो उसके पास नहीं है, ना ही हमें मालूम है कि उसको कैसे देना। ये ऐसा है कि किसी मेडिकल के स्टूडेंट को सर्जरी सिखाने के लिए ये तो सिखा दिया गया कि ऐसे ऐसे कट लगाना है, ये करना है, पर उसको स्टिच करने का नहीं सिखाया। तो वो हर बार हार खाता है, एंड देन ही कम्स बैक कंप्लेनिंग, लोग मुझसे नफरत करते हैं। अगर ये प्रॉब्लम है हमें से किसी की, कोई ऐसा है जिसको ये है कि अच्छा लोग मुझसे नफरत करते हैं, अब मैं क्या करूं, या कोई मुझसे बहुत रूड है, व्हाट शुड आई डू, क्या करेंगे आप? ये तो नेक्स्ट स्टेप है कि फिर मैं पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करूंगी, है ना कुछ। या कोई आपको निग्लेक्ट कर रहा है, से आप यहां पर चल कर आ रहे हैं और आप आ रहे हैं और आप उनके पास जाने की कोशिश करते हैं और वो दिखाते हैं कि मैं बिजी हूं, दे स्टार्ट अपना मोबाइल लेके शुरू हो जाते हैं, आपकी तरफ देखते नहीं है। या दूसरा केस है कि वो देखना तो छोड़ो, वो उठ के चले ही जाते हैं, कोई इग्नोर कर रहा है, आपकी भावनाएं क्या होंगी उस समय? जी, हर्ट होंगे। और ये भी हो सकता है कि अच्छा ठीक है वो जा रहा है, मुझे क्या करना है। हाँ, और हाँ, और आगे ठीक है, अब हम भी नहीं करेंगे बात, ठीक है उनको नहीं करना है तो हमको ही कौन सी जरूरत पड़ी है, ठीक है। हाँ, तो ये सारे जो हैं, पर ये चीज जब मान लो आपका कोई ऐसा रिलेशन है जिससे आपको बार बार काम पड़ता है, से ही इज योर बॉस, अब आप क्या करेंगे? अब आप ये तो नहीं सोच सकते मुझे क्या जरूरत पड़ी है, जरूरत तो पड़ी है। पर उसका इफेक्ट बहुत बाद में होगा, है ना। तो हर बार जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो ये सारी जो इमोशंस हमारे अंदर क्रिएट होती है ना, जैसे हर्ट क्रिएट हुआ या फिर गिल्ट क्रिएट हुआ, इतनी पब्लिक के बीच में मैं गई और वो ऐसे चला गया, इंसल्ट भी फील कर सकते हैं ना, तो ये हर्ट है, इंसल्ट है, गिल्ट है, ये सब हमारी एनर्जी को लीक करता है। तो ये हर्ट, इंसल्ट, गिल्ट, ये सारी नेगेटिव इमोशंस है ना। तो ये हमारी इमोशनल फिटनेस को खराब करता है। एंड इफ आई एम नॉट इमोशनली फिट, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी, उस सिचुएशन में मैं मेंटली भी स्टेबल नहीं रह सकती और मे बी मेरा बिहेवियर, मेरा व्यवहार लोगों के प्रति कैसा हो जाएगा, है ना, संतुलित नहीं होगा, बैलेंस्ड नहीं होगा बिहेवियर। ओशो से एक बार किसी ने कहा, बहुत सारे लोग आपसे नफरत करते हैं, तो आप क्या करते हैं? ओशो ने कहा, मैं क्या करूंगा, वो नफरत करते हैं, ये उनकी समस्या है, मेरे दिल में तो प्यार है। नाउ दिस नीड्स स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। इसलिए जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, ये ऐसी नहीं है कि कोई समस्या आएगी फिर हम प्रैक्टिस कर लेंगे। हम डिप्रेशन में चले गए, फिर हम मेडिटेशन, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया मेडिटेशन भी करो, तो हम मेडिटेशन सीख लेंगे और ठीक कर लेंगे। इट्स अ प्रिवेंटिव मेजर। लश्कर को ट्रेनिंग हमेशा युद्ध के पहले दी जाती है, युद्ध शुरू होने के बाद नहीं। अब मैं यहां मानसिक युद्ध की बात कर रही हूं। अनावश्यक युद्ध मत लड़िए। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, शायद सोसाइटी में कोई ग्रुप ऐसा होगा, कोई व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कुछ ऐसी बातें, आजकल सोसाइटीज में व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं और उसमें कोई किसी के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ कह रहा है, वो मैसेज पढ़ के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे इमोशंस हर्ट हो रहे हैं, आई एम फीलिंग बैड। व्हेनेवर आई फील बैड, आई फील लो। अब मैं लोअर एनर्जी लेवल पर जब वाइब्रेट कर रही हूं तो मेरी इमोशनल फिटनेस का हाल क्या है? ठीक तो नहीं होगा ना। इसलिए इमोशनल फिटनेस अगर बनाना है तो मुझे पूरा क्रम समझना पड़ेगा। नंबर वन, विचार अगर बार बार, संकल्प अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो इट्स गोइंग टू बिकम माय इमोशन। Once it becomes my emotion, it will be converted into action. और action की result क्या होगी? जिस direction में मेरी emotion flow कर रही है। अब वही विचार जब भावना बन गया और वो भावना, वो feeling, in fact feeling and emotion are little bit different, थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? फीलिंग पहले आती है, इमोशन पहले आती है? फर्स्ट वी फील, है ना। तो फीलिंग कॉन्शियसली क्रिएट होती है, इमोशंस कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दोनों समय कार्य करती है। फीलिंग का मतलब आई फील दिस मीन्स अनुभूति होना, और इमोशंस मतलब वो भाव और भावना बन गई। भाव और भावना होगी उसी दिशा में कर्म होगा। हमारे सेंटर पर एक डॉक्टर कपल था, ब्रदर वाज सर्जन एंड बहन जो थी वो पीडियाट्रिशियन थी। तो ये भोपाल में देवर वर्किंग और फिर वो यूएस चले गए। तो यूएस जाने के पहले यहाँ आए, दादी जानकी के पास उनको लेके गए, दादी थी। तो दादी ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा दादी ऐसे ऐसे जा रहे हैं यूएस, तो कहा कि यूएस क्यों जा रहे हो, भारत छोड़ के यूएस क्यों जा रहे हो? तो कहा दादी ऐसे नहीं, वहां भी बाबा की सेवा है, ये करेंगे ऐसा वैसा जो भी। तो दादी ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन यूएस क्यों जा रहे हो? क्योंकि तुम्हारी भावना है, मतलब भावना में है इसलिए वो कर्म उस दिशा में हुआ है। अब ये भावना अगर लगातार चल रही है तो दिस विल बिकम योर एटीट्यूड। सी थॉट्स, देन इमोशन, देन इट बिकम्स योर एटीट्यूड, आपकी वृत्ति बन जाती है। और जैसी वृत्ति हमारी होती है वैसे वातावरण का हम निर्माण करते हैं। सिफ्ट इज माई वर्क प्लेस और माई होम, वट एवर कुछ भी है, तो हम समझते हैं मेरे घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए। यहां आप सबको अच्छा क्यों लग रहा है? वातावरण अच्छा फील कर रहे हैं। इस वातावरण का निर्माण कैसे हुआ है? ये कोई एक व्यक्ति की या एक दिन की बात नहीं है। यहां जितने भी लोग रहते हैं 200, 400, 500, वो पल पल क्या सोचते हैं और उस सोच के आधार पर क्या भावनाएं उनके अंदर निर्माण हो रही हैं, और फिर उन भावनाओं के कारण उनकी वृत्ति में क्या है, उस वृत्ति के आधार पर ये वातावरण है। तो दिस इज लाइक कि एक मास्टर कंप्यूटर होता है ना, वो सार पूरे इसका, तो सारे इतने कॉन्शियसनेस का सम टोटल है ये वातावरण। तो जो सबसे बड़ी सेवा है, परमात्मा कहते हैं बच्चे, सबसे बड़ी सेवा है वातावरण का निर्माण करना, जहां लोग आकर बैठे और उस वातावरण में उनको रिलैक्सेशन फील हो, शांति की अनुभूति हो, क्योंकि जैसा वातावरण होगा वैसी अनुभूतियां होंगी, फीलिंग उस आधार पर आएगी, लेकिन निर्माण इमोशंस के द्वारा होगा और दूसरा उसको अनुभूति के रूप में लेगा। तो इस वातावरण में आपको शांति की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति, सौहार्द की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, है ना, कोऑपरेशन की अनुभूति, ये सब अनुभूतियां हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, आपके आंतरिक गुणों का में इजाफा हो रहा है, मतलब आपका एनर्जी लेवल इंप्रूव हो रहा है। तो मेरी भावनाएं हमेशा कौन सी होनी चाहिए, व्हाट ऑप्शन शुड आई चूज, जब भी विचार आते हैं कौन सा ऑप्शन चूज करना है, जिससे मेरी भावनाओं, उन भावनाओं के कारण मेरा जो अंदर का एनर्जी लेवल है वो इंप्रूव हो। ये पहचान है गुणों की। अवगुण है तो एनर्जी लेवल डाउन होगा। मान लो कि मैंने बड़ी चालाकी से कोई सफलता पाई है, किसी को पीछे करके, है ना, रेस में चलते चलते किसी को टांग लगा के चलते हैं ना लोग और सफलता पाते हैं, ऐसे ही कुछ ऐसे मैनिपुलेशंस करके मैंने सफलता पाई है, तो बाहरी लेवल पर मुझे प्राइजेस मिल सकते हैं, लेकिन अंदर से मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, जो मेरे लिए सदा काल का पनिशमेंट है, दैट इज द पनिशमेंट फॉर एवर। क्योंकि वो एनर्जी लेवल जो लो हुआ है, उस लो एनर्जी लेवल के कारण मेरी पर्सनालिटी में इतने सारे ड्रॉबैक्स आएंगे, और फिर वो जो ड्रॉबैक्स आएंगे, वो जो लोअर लेवल पर मैं वाइब्रेट करूंगी और उन संस्कारों के साथ फिर जो मेरा व्यवहार होगा और उसके कारण मेरा जो समाज में स्थान बनेगा, फिर दिस डजंट स्टॉप हियर इन दिस बर्थ ओनली, हाँ, दिस विल बी, ये आपके अंदर फिर रजिस्टर हो गया, जो भी मैंने किया वो रजिस्टर हो गया, उसको कहते हैं संस्कार। एंड दैट वो रजिस्टर्ड थिंग दैट इज कैरिड फॉरवर्ड। तो जो भी ये सारी बातें अच्छी अच्छी चीजें करके हम रजिस्टर करें, दे आर लाइक स्पिरिचुअल करेंसी टू मी। करेंसी भी बहुत तरह की होती है ना, जैसे रुपए, पैसे, डॉलर, पाउंड, फिर आजकल बिटकॉइंस एंड व्हाट जितनी सारी हैं, ऐसे ही सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये सब स्पिरिचुअल करेंसीज हैं। जैसे आप यहां से यूएस जा रहे हैं, से आपको वहां जॉब मिल गई, यहां का सब आपको बिल्कुल वाइंड अप करके वहां जाना है, तो आप क्या करते हैं, आपकी जो भी धरोहर है, जो बेच सकते हैं, जो बेचेंगे, जो रखना है, किसी को सौंपेंगे, और जो आपको जरूरत है वो आप रुपए पैसे के फॉर्म में नहीं ले जाएंगे, विल कन्वर्ट इट इनटू डॉलर्स और पाउंड्स। तो करेंसी कन्वर्ट करनी होती है। ऐसे ही ये जो पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस हम क्रिएट करते हैं, ये हमारे अंदर रजिस्टर हो जाते हैं, जो भी अच्छे कर्म हमने किए, और उन कर्मों के साथ वो पॉजिटिव थॉट्स एंड इमोशंस, दे गॉट रजिस्टर्ड। अब वो शांति के रूप में, प्रेम के रूप में, आनंद के रूप में आत्मा वो करेंसी लेकर जाएगी इन द नेक्स्ट बर्थ्स, और फिर वो वहां जाके डीकोड होगी, कोडिंग हो गई, वहां जाएंगे फिर डीकोड होना शुरू होगा, क्योंकि अब आप शांति के संस्कार के आधार पर व्यवहार करेंगे, प्रेम के संस्कार के आधार पर व्यवहार करेंगे। तो ये ऐसा है कि ये खजाना कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, पर एक चीज की हमको प्रिकॉशन जरूर रखनी है, कभी भी अगर थोड़ा भी मेरा माइंड अवगुणों की तरफ डाइवर्ट होता है और मैं अपना रास्ता चेंज करती हूं, वहां से करेंसी लॉस शुरू हो जाता है। अब ये सब चीजें इतनी अंदर अंदर गुप्त में हो रही है, अब मैं जहां रहती हूं या रहता हूं या जहां काम करता हूं, वहां बहुत सारी चीजें ऐसी मेरे इर्द गिर्द होती रहती है। टीम वर्क करना है मुझे, से मेरा एक डिपार्टमेंट है, से आई एम वर्किंग इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, और से बायो जो भी आपका एक डिपार्टमेंट है वहां पर 10 स्टाफ मेंबर्स हैं, उन सबके साथ मुझे मिलकर काम करना है और वो हो नहीं पा रहा है, टीम वर्क नहीं हो रहा है पॉसिबल, क्या करेंगे? अगर हम उनके अवगुण देखेंगे, बार बार उनके अवगुण हमें दिखाई देंगे, तो ये बहुत बड़ा थ्रेटनिंग हो जाएगा, हमारे लिए भी ये थ्रेट है कि थोड़ा बहुत हम भी डाइवर्ट हो जाएंगे उस तरफ। आपको एक बहुत सुंदर एग्जांपल बताती हूँ, हमारे इधर दो बच्चे थे, रितिका और विशाल दो बच्चे थे, तो दिस रितिका वॉज एल्डर सिस्टर, एक साल से बड़ी थी और विशाल छोटा था, तो ये दोनों भाई बहन जब छोटे थे तो जो बड़ी बहन थी रितिका वो तोतला बोलती थी, एंड दिस विशाल उसका बिल्कुल क्लियर स्पीच था एंड ही वॉज वेरी गुड इन स्टडीज, बहुत इंटेलिजेंट था, रितिका इंटेलिजेंट नहीं थी पर उसकी वॉइस बहुत अच्छी थी एंड शी हैड अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक। तो ये जो विशाल था उसको खेलने में हमेशा चिढ़ाता, उसी का भाई, क्योंकि आसपास रहते थे बच्चे, देखते देखते वो बच्चे बड़े हुए, बाय द टाइम विशाल रीच्ड इन क्लास 9th एंड रितिका रीच्ड इन क्लास 10th, व्हाट हैपेंड, धीरे धीरे रितिका ने अपनी स्पीच क्लियर कर लिया और अब विशाल तोतला बोलने लगा, और उसके रिजल्ट क्या हुई, 9th क्लास में ही वोन साइंस ओलंपियाड एंड ही वाज सिलेक्टेड टू प्रेजेंट हिज, वो पेपर जो भी है उसको प्रेजेंट करने के लिए ऑल इंडिया लेवल पर सिलेक्ट किया, पर क्योंकि उसकी स्पीच क्लियर नहीं थी इसलिए सेकेंड नंबर वाले को भेजा गया, और एंड दिस रितिका वोन एवरी सिंगल कॉम्पिटिशन, जहां भी वो गई म्यूजिक के कॉम्पिटिशन में उसने हर कॉम्पिटिशन जीती और अब वो अच्छी सिंगर है। तो किसी, ये बहुत मोटे लेवल पर है एग्जाम्पल, तो हमारे समझने के लिए ठीक है कि किसी के भी अवगुण अगर हम इतना गहराई से बार बार देखते रहते हैं वो बातें हमारे अंदर उतर जाती हैं, और फिर वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है। अब वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा हो गई तो अब हम अवगुणों के आधार पर कर्म करेंगे और वो मेरे संस्कार बनेंगे और वो अब मेरी प्रॉपर्टी बनकर मेरे साथ चलेगी, वो एनर्जी केवल इसी बर्थ के लिए नहीं, हमेशा के लिए, अनटिल एंड अनलेस मैं खुद उस एनर्जी को चेंज करने के लिए कुछ ठोस नहीं कर पाती। और वो ठोस कदम क्या है वो आप यहां सीख रहे हैं, राजयोग मेडिटेशन। इनफैक्ट दिस मेडिटेशन इजंट कि हम सिर्फ ऐसे बैठ के और कुछ किसी पोजीशन में बैठ के कुछ देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इट्स ऑल वर्किंग इनसाइड, अपने ऊपर काम करना है। ये केवल कुछ मिनट का, घंटे का पोज नहीं है, लेकिन अपने थॉट पैटर्न पर अगर हमने एक बार ध्यान दे दिया और हमारे संस्कारों में अच्छी चीजें आ गई तो फिर हमको बार बार वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फिर हमारी नेचुरल हैबिट्स बन जाती। किसी एक दिन मुझे 4 बजे उठ के अगर मेडिटेशन करना है तो आई मे फील कि ओहो नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर रोज 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 हमने वो किया तो बायोलॉजिकल अलार्म सेट हो जाता है, फिर आपके लिए वो इजी हो जाता है। तो लाइफ की हर छोटी सिचुएशन में केवल थॉट्स पर ही ध्यान मत दीजिए, इमोशंस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि भाव और भावनाएं हमारी वृत्तियां हमारी नीयत को भी डिसाइड करती है। देखिए एक नाइफ है, वो नाइफ अगर एक सर्जन के हाथ में हो तो और एक क्रिमिनल के हाथ में हो तो क्या अंतर आएगा? एक लाइफ देगा दूसरा लाइफ लेगा, एक को सम्मान दुआएं और दूसरे को सजाएं, फर्क किस बात का है? हाउ यू आर यूजिंग इट एंड व्हाट डिसाइड्स दैट? Your emotions are deciding how will you use that instrument. Similarly, हमारे पास ये पूरी body है, इतने सारे act organs हैं. Each of us, we are using those instruments according to our emotions. If I am not emotionally fit, तो कुछ न कुछ weak emotions means negative emotions, waste thoughts, negative thoughts, वो फिर waste और negative emotions में परिवर्तन हो जाते हैं। व्यर्थ की भावनाएं व्यर्थ के संबंध संपर्क को जन्म देती हैं, और वो व्यर्थ के संबंध संपर्क को निभाते हुए हम ड्रेन होते जाते हैं। Why drain my energy? क्यों मैं अपना इतना अच्छा खजाना विफल करूं? परमात्मा के बहुत अच्छे महावाक्य हैं। इस जीवन में एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? खुशी, खुराक और खजाने, वो चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो। अच्छा वातावरण है, हम खुश हैं, खजाने मिल रहे हैं, ज्ञान मिल रहा है, शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, कोऑपरेशन मिल रहा है, सब कुछ खजाने मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और खुराक मिल रही है, ज्ञान की खुराक भी मिल रही है और स्थूल खुराक भी मिल रही है, तो वी आर फीलिंग गुड, अच्छा लग रहा है। तो हम ऐसे ही हमेशा रह सकते हैं। घर में 4 लोग हैं, चारों की वृत्तियां एक साथ पॉजिटिव नहीं होंगी, लेकिन अगर किसी एक की वृत्ति पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिविटी फ्लो करेगी, धीरे धीरे दूसरे भी पॉजिटिव होते जाएंगे। यहाँ के एग्जाम्पल से देखिए, फाउंडर जिनको हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं, वो अकेले थे पर उनके विचारों और भावनाओं ने इतने लाखों लोगों को क्रिएट किया। अब आप थोड़ा सा ये देखिए कि इमोशनली हमको कौन कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, और उससे मैं कैसे बच सकती हूं। फिल्म देखने बहुत सारे लोग जाते हैं, अब आजकल थिएटर्स में लोगों ने जाना कम कर दिया, पर फिर भी मॉल में जाते हैं और एक सीन पर्दे पर चल रही है, उस सीन में बहुत सारे लोग एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई ट्रेजिक सीन है तो रोने लगे, कोई वायलेंट सीन है तो एकदम वो भी एकदम ऐसे हो गए, भय की कोई सीन आई तो भय फील कर रहे हैं, और वहां पर ही कोई बाजू में कोई रो रहा है तो बाजू में कोई दूसरा बैठ के कह रहा है अरे वो फिल्म है, रो क्यों रहे, वो कोई सच में थोड़ी हो रहा है, और वो स्टेबल है। व्हाट इज द डिफरेंस? दे आर गेटिंग इमोशनली इन्वॉल्व, उस सीन में इतना इन्वॉल्व हो गए तो वही इमोशंस उनके अंदर भी फ्लो होने लगी। ऐसे ही ये वर्ल्ड ड्रामा है. वी आर पासिंग थ्रू डिफरेंट सीन्स, और किसी सीन में अगर हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उस सीन के अंदर जो लोग होंगे उनके अंदर जो इमोशंस चल रही है वही मैं मिरर करने लगूंगी. तो मेरी ओन इमोशंस कुछ रह नहीं जाएगी. दिस इज लाइक कि मैं गुलाम बन जाती हूं. और गुलामी में फिर सुख कहां? फिर वो जैसे चाहें मुझे मैनिपुलेट करेंगे. छोटे छोटे बच्चे भी आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर लेते हैं ना, है ना? अनुभव नहीं है, है ना? पर वो तो ठीक है, छोटे बच्चे घर में हैं वो इतना नहीं, पर यही जो छोटे छोटे संस्कार बने हुए हैं वो फिर मनुष्य सीख जाता है कि अच्छा ये काम ऐसे करवाया जा सकता है, मनमाना काम. That is why it is very important कि मैं stable रह पाऊं, emotionally fit रहूं. इसके लिए मुझे अपने विचार और भावनाओं पर regularly work करना है. क्या क्या work करना है note करिए. Number one, हर घंटे में हमारे पास एक मिनट हो सकता है सबके पास. Every hour we can have 1 minute. उस एक मिनट में थोड़ा सा अपने अंदर ये देखने की कोशिश करें कि इस पूरे घंटे में किस तरह के विचार चले मन में. वो पॉजिटिव थे, वो नेगेटिव थे, वो टॉक्सिक थे. कई बार टॉक्सिक भी होते हैं थॉट्स. टॉक्सिक मीन्स ठीक है मेरा भला हो ना हो, मेरा बुरा भले हो जाए लेकिन उसका तो करके जाऊंगा. लाइक कि मुझे भले जेल हो जाए लेकिन उसका तो काम तमाम करना ही है. तो ये टॉक्सिक थॉट है ना, ह्यूमन बॉम्ब बन के जो लोग आ जाते हैं वो क्या है, टॉक्सिक थॉट्स के रिजल्ट है. तो अनप्रोडक्टिव भी होते हैं थॉट्स. देयर वेस्ट थॉट्स, अनप्रोडक्टिव थॉट्स फिर धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. फिर वो नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव इमोशंस, अनप्रोडक्टिव थॉट नेगेटिव थॉट्स, टॉक्सिक थॉट्स, ये वो लेवल ऊपर बढ़ता जा रहा है. तो जब इस तरह की चीजें हो रही हैं तो मुझे एक घंटे में एक मिनट निकाल के ये देख लेना है कि पिछले पूरे घंटे में मेरे विचार किस तरह के थे. कोई विचार अगर रिपीटेडली आपके मन में चल रहा है तो फिर आपको उसको थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा क्योंकि अब वो भावना बनने जा रहा है. और भावना एक बार बन गया तो वो कर्म होकर रहेगा. दैट इज व्हाई आई हैव टू पुट अ फुल स्टॉप. अब किसी भी विचार को अगर मुझे लग रहा है कि ये नेगेटिव है और मुझे इसको चलाना नहीं है पर वो रुक नहीं रहा है तो अब मैं क्या करूं? ब्रेक नहीं है मेरे पास. आई डोंट हैव दैट कंट्रोलिंग पावर. तो जब आपकी कार का ब्रेक फेल हो जाता है आप क्या करते हैं? एक्सीडेंट से बचने के लिए आप स्टीयरिंग को यूज करते हैं, मोड़ लेते हैं, ऐसे करके गाड़ी चलाते हैं ना. तो एकदम शुरू शुरू में ब्रेक नहीं लगेगा. आपको क्या करना है? अपने विचारों को दूसरी दिशा दे देनी है. लाइक कोई आपकी हॉबी है या कुछ ऐसे और इम्पोर्टेंट काम है. और जैसे जैसे ये अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती जाएगी अबाउट द थॉट्स, अबाउट इमोशंस, एटीट्यूड्स, फिर धीरे 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 हमारे विचारों की गति भी कम होती जाएगी. तो क्या मुझे इस गति को जीरो पर पहुंचाना है और शांति मिलेगी? क्या है आइडियल सिचुएशन जी? नहीं है वो. वैसे तो थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स हम क्रिएट करते हैं दिन भर में. ऐसी कोई हमको कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन. पर ये जो एक है ना, मेडिटेशन मीन्स नो थॉट्स। नो थॉट्स मतलब तो वो डेड, हमको जैसे शांति और सन्नाटा फर्क है ना, तो हमको वो शमशान वाला सन्नाटा नहीं चाहिए, शांति चाहिए। शांति मीन्स स्वीटनेस, पॉजिटिविटी। और स्वीटनेस और पॉजिटिविटी के साथ जब आप थॉट्स क्रिएट करेंगे तो जरूर धीरे होंगे। आपको मैं एक सिचुएशन देती हूँ, दो हस्बैंड वाइफ हैं, उनमें बहुत झगड़ा होता है। पर एक बोलता है कि जब से तुम्हारे साथ शादी हुई है बिल्कुल मेरा तो सुकून चला गया है। द वाइफ रिस्पॉन्डिंग, आप क्या समझते हो, आपके यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ, पिछले इतने 30 सालों में क्या किया है आप लोगों ने मेरे घर वालों के लिए, क्या किया है ये वो थॉट्स कैसे चलते हैं वेरी फास्ट। फिर अचानक से दिशा मोड़ते हैं थॉट्स की। हम पिछले बार शिरडी गए थे ना, वहां कहां रुके थे तुमको याद है, बुक करता हूं, होटल बुक करना है। अब क्या हो गया, वो फाइल दूसरी फाइल साथ में खुल गई जो एक अलग फ्रिक्वेंसी पर डिपॉजिट यहां पर स्टोर हुई है, वो ऐसा ऐसा। फिर कितना मजा आया था ना, फिर धीरे धीरे वो नेगेटिव जो है फाइल वो क्लोज होने लगती है। तो हम चेंज कर सकते हैं, हम सिचुएशंस में हल्कापन माहौल में ला सकते हैं। इससे केवल मेरी ही भावनाएं नहीं बदलेंगी, सामने वालों की भी भावनाएं बदलेंगी और एक पॉजिटिव एनर्जी का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और जिससे सबका एनर्जी लेवल इंप्रूव होगा। यह है सेवा, दिस इज सर्विस एंड दिस हैज टू बी सेल्फलेस। हम जब मिलते हैं, रहते हैं एक साथ, जब रहते हैं लोगों के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, अब मैं उनको देखूं नहीं देखूं, आंखें कितना भी बंद करूं, काम लेना है, काम नहीं कर रहे हैं। समटाइम्स आई एम नॉट ओनली एजुकेशनिस्ट, उसके बाद मेरे पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, नॉट ओनली ऑफ द इंस्टीट्यूशन, घर में भी होती है। अब क्या करें, तो जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो कोऑपरेट करना सीखें हम। एंड व्हाट इज कोऑपरेशन इन द फैमिली, इन द इंस्टीट्यूट? कोऑपरेशन इज भाई चलिए आपका लेक्चर है, आप नहीं करा पा रहे तो क्या, आई विल टेक इट। यू वॉन्ट ब्रेक, हॉलीडे चाहिए आपको तो मैं आपके बदले एंगेज कर लूंगी आपकी क्लास, ठीक है। पर जो मेंटल लेवल पर कोऑपरेशन है वो क्या है, मुझे पता है कि ये मेरे साथ काम करते हैं तो ऑफिस भी एक फैमिली है, वो भी एक फैमिली है जहां हम काम कर रहे हैं, वहां पर भी जो लोग हैं, चाहे घर में जो लोग हैं, मैं समझती हूं कि मेरे संस्कार और इनके संस्कार अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं, और मैं इनके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती हूं कि आप बदल ही जाइए, बिकॉज बदलना नहीं बदलना उसकी चॉइस है। अब मान लो यहां हम कहते हैं इस बीके फैमिली में कोऑपरेशन, दादी जानकी यूज टू से, हमारी जो दादी थी जो चीफ थी अभी इनके पहले, वो कहती थी कि ब्राह्मण फैमिली में, बीके फैमिली में कोऑपरेशन क्या है, जब तक कोई दूसरा चेंज नहीं हो रहा है तब तक मैं सहनशील रहूंगी और उसके प्रति सद्भावना बनाए रखूंगी। यह है कोऑपरेशन एंड दिस इज हाउ फैमिली रन्स। क्या ये कर सकते हैं हम अपने घरों में? कर सकते हैं। अगर हमने अपने थॉट्स पर, इमोशंस पर चेकिंग रखी तो हम कर सकते हैं। इसके लिए जो पॉजिटिविटी चाहिए वो हमको रोज सवेरे मॉर्निंग क्लास में मिलती है। लाइफ में इसको मेक इट अ हैबिट. मे बी ये डिपेंड करेगा कि उनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट कितना है. मे बी पर वो 25 इयर्स में मैं अपने को इमोशनली स्टेबल कैसे रखूंगी, दैट इज सेकेंड थिंग. ठीक है, मैं तो क्या मैं कोऑपरेशन करना छोड़ दूं? अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? दूसरा ऑप्शन क्या है? ओके, मैं 25 इयर्स के बाद मैं थक गई. अब मैंने कहा आई विल नॉट कोऑपरेट. तुम नेगेटिव होगे, मैं भी नेगेटिव होंगी. आई हैव जीरो टॉलरेंस फॉर दिस नाउ. व्हाट विल बी द रिजल्ट? डिवोर्स. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. लेकिन हाँ, लेकिन ऐसी सिचुएशंस को भी ऐसे नहीं, स्पिरिचुअलिटी में कोई भी ऐसा एक फॉर्मूला नहीं होता जिसको आप सीधा अप्लाई कर दोगे कहीं भी जाके. इट्स नॉट लाइक मैथमेटिक्स की एक फॉर्मूला मिल गया हर जगह वही अप्लाई होगा. नो, यू नीड टू हैव स्पिरिचुअल विजडम कि सिचुएशन क्या है, बात कैसी है, कार्मिक अकाउंट किस टाइप के हैं, और अब मुझे कैसी चूज करना है, कौन से कर्म करने की रीति मैं चूज करूंगी, और उसके आधार पर मेरी डेस्टिनी बनेगी. तो विजडम अगर मेरा ठीक काम कर रहा है, ये ज्ञान नेत्र, विवेक का नेत्र अगर ठीक तरह से काम कर रहा है, तो आई विल ऑलवेज चूज द राइट ऑप्शंस. और ये पूरे जीवन की पढ़ाई है, इसलिए हमको रोज सवेरे एक घंटे यहाँ पढ़ाई मिलती है. जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, ये कहते हैं परमात्मा जी. डिपेंड्स, वो अपनी चॉइस है और डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है. कोई एक चीज जो किसी एक के लिए राइट हो सकती है, किसी दूसरे के लिए राइट नहीं भी हो सकती है. सो विजडम, इसलिए हमको स्पिरिचुअल विजडम चाहिए, क्योंकि फिर मुझे समझ में आएगा कि एवरी सोल इज पासिंग थ्रू द जर्नी एंड द जर्नी ऑफ द सोल इज नेवर एंडिंग. वो कब से चल रही है और कब तक चलेगी मुझे पता नहीं है. नहीं, ये मतलब ये हम, इट्स नॉट फॉर श्योर, क्योंकि कार्मिक अकाउंट फिजिकली साथ में रहने या नहीं रहने से उसका कोई लेना देना नहीं है. इट्स रिलेटेड टू योर थॉट्स, इमोशंस. आप दूर दूर रह रहे हैं और सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में. आप बात नहीं करते जिनसे, नाराज होते हैं जिनसे, आप क्या करते हैं, बात करना बंद कर देते हैं. अच्छा, फिर सबसे ज्यादा बात किससे होती है? जिससे नाराज होते हैं उससे ही आप सबसे ज्यादा बात करते हैं, जिससे नफरत करते हैं उससे सबसे ज्यादा बात करते हैं. तो शक्तियां चाहिए, इसलिए इमोशनली फिट रहने के लिए शक्तियां चाहिए. सहन शक्ति एक बहुत अच्छा गुण है, पर सहन शक्ति का मतलब ये नहीं कि कोई मुझ पर गर्म पानी की बाल्टियां फेंकेगा. और सहन शक्ति का मतलब है कि मैंने पहले से ही अपने इर्द गिर्द इतना अच्छा एक कवच बनाया हुआ है कि इन बातों का मुझ पर इम्पैक्ट नहीं होता. कोई गलत कर रहा है और फिर भी मैं उसको एज अ पर्सन एक्सेप्ट करती हूँ, दैट डजेंट मीन कि आई एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स, या मैं, दैट डजेंट मीन कि वो जो कुछ कर रहा है सही है. दैट ओनली मीन्स कि आई अंडरस्टैंड दे आर लिटिल डिफरेंट. उनकी सोच अलग है, उनके संस्कार अलग हैं, मैं अलग हूं. ना वो गलत है ना मैं गलत हूं. लेकिन अब ऐसा मैं क्या करूं कि दोनों के संस्कार टक्कर ना खाएं. कोई गलत गाड़ी चला रहा है रोड पर तो आप क्या करते हैं? आप सावधानी से बच के निकलते हैं कि पहले उसको गाड़ी चलाना सिखाते हैं. और वो सीखेगा क्या? एक कार बाजू में जा रही, गलत गाड़ी चला रही, व्हाट विल आई डू? अपनी कार का गेट खोल के, अपना पैर ब्रेक से निकाल के, उसकी गाड़ी का गेट खोल के और फिर उसकी गाड़ी का ब्रेक लगा सकती हूँ क्या मैं? सेम इज द केस हियर। तो इमोशनली फिट रहने के लिए नंबर वन, एक तो ये कि अपने थॉट्स और इस पर जांच रखिए, दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए। दे विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू यू अंटिल एंड अनलेस दे देमसेल्व्स रियलाइज दे विल नॉट चेंज। ये सबसे बड़ा होता है। तीसरा, अपनी एनर्जी को लीक होने से बचाएं। कोई भी नेगेटिव इमोशन, कोई भी थॉट आ रहा है तो उसी समय, ऐसे नहीं अब देखेंगे, उसी समय एक मिनट का टाइम निकाल कर थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी की तरफ मुड़ जाइए। बिकॉज दिस इज अ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम नॉट फिजिकल, सो यू विल नॉट हैव अ फिजिकल सॉल्यूशन टू दिस, स्पिरिचुअली ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड फॉर दैट यू नीड स्पिरिचुअल नॉलेज, राइट? सिट बैक फॉर अ वाइल और फिर हर रात को सोने से पहले परमात्मा सिखाते हैं, बच्चे अपना पूरा पोता मेल दो। परमात्मा बच्चे बच्चे कह के इतना प्यार से पढ़ाते हैं, पोता मेल इज गिव योर अकाउंट, राइट? अ लेटर टू गॉड, दो लाइन का लेटर, जैसे हम पापा को लिखते, पापा आई एम ओके, हाउ आर यू एंड मामा, ऐसे राइट अ लेटर टू हिम। फिर अगर आपकी कोई पर्सनल बात है तो अपने तकिए के नीचे रख के सो जाइए, सुबह उठ के फाड़ दीजिए, नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल बी अ न्यू पर्सन, ठीक है? और फिर रात को सोने से पहले देने के बाद सुबह उठते ही कम से कम 5-10 मिनट एक अच्छी टॉक कीजिए परमात्मा के साथ। ये 3-4 चीजें आपको इमोशनली फिट बनाए रखेंगे। इज दैट फाइन? क्योंकि इन 2 समय पर ही हमारा सबकॉन्शियस वर्क करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसमें कोई चीज अगर अंदर चली गई तो वो होके रहती है। लेकिन मुश्किल क्या है, उसमें कुछ भी फीड कब होता है, जब आप आनंदमग्न अवस्था में, रिलैक्स्ड अवस्था में होते हैं। तो रात को सोने से पहले जब आप रिलैक्स्ड हैं और सुबह जब आपकी न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड है, वो 2 समय है, ठीक है? ये 2 समय हमें वरदान के रूप में मिले हैं सृष्टि पर। इन दोनों समय का पूरा पूरा उपयोग कीजिए और अपने आप को इमोशनली फिट रखिए। इमोशनल फिटनेस एक मसल की तरह है। कोई मसल वीक होती है तो उसको जिम जाके आप रोज 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 एक्सरसाइज करके फिट रखते हैं अपने शरीर। ऐसे ही रोज 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 इन बातों पर ध्यान दीजिए। दिस इज टाइम फॉर अस टू एम्बार्क ऑन स्पिरिचुअल जिम, ओके जी? अब देखिए, ये उनके अंदर चल रहा है, मुझे अपने अंदर ध्यान देना है। मैं हर्ट क्यों हो रही हूं, मैं हर्ट क्यों हो रही हूं? कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को उनसे इमोशनली अटैच किया हुआ है, इसलिए वो इम्पैक्ट है। ठीक है, वो रूड है, लेकिन मैं अपना संस्कार क्यों छोड़ूं और मैं अपना नुकसान क्यों करूं? गलती वो कर रहे हैं, नंबर मेरे क्यों कटे? तो इसके लिए मैं कुछ तरीके अपना सकती हूं। जैसे मैं उनसे एकदम से कोई अच्छी बात जाकर नहीं कर सकती, अभी उतना मेरे अंदर वो नहीं है पार, लेकिन मैं, क्योंकि मैं ये समझ गई हूं कि इससे मेरा नुकसान हो रहा है, तो मैं शुरू कहां से करूंगी? उनके लिए अच्छा सोचना शुरू करूंगी। जब वो सोच बहुत अच्छी वो हो जाएगी, वो मेरी भावनाओं में आएगा, और भावनाएं जब उन तक ट्रैवल करेगी, नेचुरली थोड़ा बहुत फर्क दिखने लगेगा। कोई कितना समय रूड रह सकता है आपसे, दैट टू इन अ वर्क प्लेस, राइट? ओके, इट्स टाइम, अब हमको स्टॉप करना है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किरण दीदी जी। बहुत सुंदर शब्दों में आपने इमोशनल फिटनेस को बढ़ाने के तरीके हमें समझाए। विचार हमारे जीवन का आधार है, बार बार विचार रिपीट होता है वो हमारी भावना बन जाती हैं, और जब भावनाएं बार बार रिपीट होती वही हमारा एटीट्यूड बन जाता है, और एटीट्यूड जो कर्म में आता है उससे से जीवन बनता है। तो इमोशनल फिटनेस को बढ़ाने के लिए हमें खुद को बदलने की आवश्यकता है, हम दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें। ये आपने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया, इसलिए दुनिया कहती है कि जग बदले तो हम बदले, और हम चाहते कि दुनिया बदले तो हम बदले, लेकिन खुदा कहते हैं हे बंदे तू खुद बदल जा तो सारी दुनिया खुद बदल जाएगी, खुद बदल जाएगी। तो आपने हमें इतने सुंदर शब्दों में लाभान्वित किया, इसलिए पुनः हम एक बार दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। अभी हमारे मध्य आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जो कि अहमदाबाद अदानी यूनिवर्सिटी के प्रोवोस्ट वाइस चांसलर है आप, डॉक्टर एम मुर्गानंद जी सभा में उपस्थित है। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। तहे दिल से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं तालियों के साथ। बहनों से अनुरोध करती हूँ कि गुलदस्ता और बैच के द्वारा आपका स्वागत करें। डॉक्टर मुर्गानंद जी प्रोवोस्ट फॉर्मर फाउंडर अडानी यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, और पोस्ट बीइंग टू टाइम्स वाइस चांसलर विथ वन ऑफ देम बीइंग द फाउंडिंग वीसी ऑफ अडानी यूनिवर्सिटी, ही हैज नाउ फाउंडेड अ लार्जर एकेडमिक एंटायरली नेम्ड अकेडनेट। अकेडनेट वर्क्स क्लोजली विथ एकेडमिक फ्रेटर्निटी कॉर्पोरेट्स एंड पॉलिसी मेक्स टू क्रिएट impact for well-being of planet and people, addressing SDG 4 quality education. Academet hosts a new portal, academews.com, which has 10 lakh plus readership and counting from 18 plus countries. तो आप ऐसे बहुत सारी विशेषताओं से सुशोभित मध्य हमारे उपस्थित है, तो अभी हम आपसे आपके विचारों से लाभान्वित होना चाहते हैं, तो आप अपनी शुभ भावनाएं हमारे मध्य रखेंगे डॉक्टर मुर्गानंद जी।
ओम शांति टू एवरीवन, नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग। वेरी एनरिचिंग नॉलेज दैट वी हैव रिसीव्ड टिल नाउ। आई एम नॉट श्योर व्हाट वैल्यू एडिशन आई एम गोइंग टू डू एक्स्ट्रा टू इट। A small correction, I'm a former and founding Vice Chancellor, I'm not the current Vice Chancellor of Adani University. But yet, we know what the academic world is doing. Just to break the monotony, is it okay I speak in English? Yeah, thank you. Just to break the monotony, you know, let's take about 30 seconds and do a small exercise, which I normally ask my faculty to do during any of the board meetings. So as we sit straight, if you can sit straight, you would all know this, it's called the Brahmari. Closing the eyes, closing the ears, and three times let's do the sound, the honeybee sound. We have a lot of honeybees around, right? So let's do that three times. You know the sound of Om, and that you reverberated resonates. The end of that sound is silence, resulting in Shanti. Right? So the word or the phrase Om Shanti by default fits together. Now, being a material scientist, let me ask this question. Do we all know superconductors? Superconductors? So a lot of academicians around here, a conductor which does not have or zero or lowest resistance to flow of current, it's a superconductor. Have you all known at what temperatures the superconductor is possible in the current times, or at least a decade back? Any guesses? 150 Kelvin. Could you put it in centigrades? Just tell me if it is positive or negative temperature. All right. Thank you. So sub-zero temperatures is where we normally get to have superconductors. You know, there's a very strong relation to that and our mental working principles. You know, why do we get superconducting state at sub-zero? Because the vibrations are reduced. So the attenuation is reduced. As the vibrations are reduced, the flow is unimpeded. The resistance is lesser. We are trying to now find how to bring these superconducting principles or ability to room temperature. Now this goes as an anecdote to what we are experiencing here. We experience silence here, sub-zero temperatures. Okay, we are experiencing silence here. So we go to our workplace, room temperature. Okay, so are we still able to experience that silence and respond, then react? That's a question we need to ask. At lower temperatures, the resistance is less. So the flow of the current is maximized. When we are in a spiritual atmosphere, our mental entropy is less. So the spirit finds expression. But when put in a situation where ideally we should be, what is happening? It's a question to ask ourselves. You know, I keep mentioning this. The test of the best driver is when the accident actually happens. The skill of driving is tested to the brim when the situation of accident is, right? Now, we in the world are going through so many ups and downs. How are we placing ourselves? Is again a question that we need to ask. Another example. I'll take the same superconducting magnets. Yeah, it's interesting. Have you heard of the high-speed trains in Japan? The Shinkansen trains? Yeah? What is the speed at which they travel? Be louder, please. 320 kilometers per hour is the speed of Shinkansen trains. You know how they operate? Magnetic. So what is the principle? There are superconductors placed beneath as rails, and the train also has, but this creates a suspension between the rail and the train. So it's suspended in air, but yet not away from the track. Being in the world, not of the world. Right? So there's an attraction and there's a repulsion. A state of detachment. And yet, not fully detached. Right? I'm only reminded of this, you know, Mahamrityunjaya mantra. Trayambakam ijamahi sugandhim pushti vardhanam urvarakameva bandhanat mrityor mukshyamamratat. Right? The first statement, Trayambakam ijamahi sugandhim pushti vardhanam, is about the praise of the Lord. The second statement is more powerful. Urvarakameva bandhanat mrityor mukshyamamratat. Just like how a pumpkin detaches from the plant, yet is not seemingly detached. Likewise, let me gain immortality. Being in the world, not of the world. Make sense? When we are in that dispassionate state, the speed goes higher because the friction is less. When the friction is less, heat is less. Suffering is less, pain is less. Right? So the speed, the efficiency, the productivity increases phenomenally. And so again, bringing it to the perspective of what we are learning here, it's important to implement it and get to that state of dispassionate dispensation of our work. You know, this is so interesting that we are studying ourselves here. Well, we have been carrying ourselves for quite some time. Let me switch gears now. In the academic world, because we are in an educators conference, and we are talking about global transformation through spiritual education. The two words, transformation and spiritual, are very profound here. Transformation. Let me split this word. Trans hyphen formation. Trans meaning transcending. Formation is a conditioning. Any form is a condition. So transcending any condition is transformation. Now how are we going to do it? Through spiritual education. Now what is spiritual? That word is again interesting. The spelling is S-P-I-R-I-T-U-A-L. The first three characters, S-P-I for the spirit. Remove that, it's ritual. Ritual is a mechanistic, uninvolved state of the spirit, where the mind alone takes over and starts making you function. Right? Accidents are possible. Reactions are imminent. Responses are nowhere to be seen. But when SPI is added, the spirit is added, it's all responses, not reactions. So it's extremely crucial for us to see how this engagement that we have here helps us to transcend the conditionings of the mind. In one of the articles which I've written in Financial Express, I mentioned this 3T formula for the academic world where we can get to improve our student performance, and including the faculty performances. It's a 3T formula. The first T stands for translate. All information that we are gathering needs to be implemented. Translate information to implementation. That's very crucial. It's including what we learn, what we teach to the students, because they need hands-on experience if you're wanting them to be employed. Translate. The second one is transcend. Transcend all the limitations of conditions. Well, in the university system, we say transcend the silos of disciplines, because we are looking at transdisciplinary model of education. So all the limitations and conditions needs to be transcended. The third T is transform. Transform self. The 3 days we have been pointing the fingers to us, right? Transform self to transform the world. You know, if you see the UN Sustainability Development Goals, it's all talking about all the 17 SDGs are talking about doing in the world, doing in the world. Where is the person? Where are people? Without people, Earth, yeah, it's definitely good. COVID is an example. The flora and fauna flourished like anything without people on the ground. But then, where are we in this whole process? The highest species is lost. So perspectives are important. SDG 4 is quality education. And quality education talks about bringing those global citizens into this world, which can make this place a better place, the planet a better planet. The well-being of the people in the planet is important. We all have heard of the Industry 4.0, yes? What is next? Industry 5.0. The numbers are going to be increasing. And what is Industry 5.0? Work has already started. The European Commission has already given the report. And the three pillars of Industry 5.0, the first one, human centricity. The first one is human centricity. Because humans are crucial. If you let alone the planet to go the way we are using it and exploiting it, it will make sure humans don't exist. Right? The karma theory. The ball you throw comes back. Right? So we need to know what are we throwing. It's important. The second one is sustainability. Sustain all the right aspects that we are embodying. Let all that negative emotions and everything go off. You have to keep it in check. It's very crucial. And the third one is resilience. This is very crucial. Resilience. Mental resilience is directly related to the topic of discussion today. Emotional fitness. If one is not emotionally fit, you don't talk about mental resilience. A respectable sister just mentioned about the number of cases in the IITs and the other universities where the students are taking the otherwise right decisions. To be polite to them. Why? Because they are easily getting depressed. The traffic is too much. Uncontrollable traffic. Non-navigable skills. I do not know how to navigate. And so, accident is imminent. As academicians, how do we make it positive? It's a very important question, and it's a very a sad question. I'm asking this with a lot of feelings for the next generation. Is the world a better place for our children? If not, what do we need to do? And this is again, I used to tell my faculty, get up every morning and ask, have I made this place a better place for my child? Be selfish. And things will be fine. So in Industry 5.0, the graduate attributes that are required, again, can be brought under another acronym called SCRAL. S-C-R-A-L. Because AI is going to take all the routine jobs. Anything that comes under the heuristics or a mathematical equation will be under the domain of machines. So what are humans going to do? A question to ask. If not to be human, what else can we do? And what is to be human? Right? So, the graduate attributes, S-C-R-A-L, defines it. S stands for sensitivity. Machines cannot be sensitive unless you program it so. Just like how in Japan, to address loneliness, they have robots. And the robots come and, you know, they modulate their voice in such a compassionate way so that the people feel that, oh, there's some compassion. But then they don't know that it's a robot. Right? So you cannot feel that. Though we can trick our minds, just like how we heard from Brother Girish, that you can reprogram your mind. But then how long? The advanced age people, they want a touch of love, compassion. Robots cannot give that. Right? Sensitivity. And solution centricity. Again in S. Look at the solutions, not the problems. C, the next character, C, is curiosity. This allows us to explore domains for innovation so that we are not conditioned by aspects which we already know. Prejudices will not be there. That which we carry from the past, unless otherwise that is taken off, we will not explore. R is resilience. Again, it's mental resilience. How fast I spring back from a situation, that's very crucial now. I'm not able to withdraw back at the speed I want so that I can be more productive. So resilience is important. A, the next character, is adaptability. Teamwork. Again, sister mentioned about teamwork. Cooperation is not there because adaptation is not happening. There's always a blame game. The three fingers towards me, one finger towards the world. It's not going to work. So adaptability is very crucial. How fast I'm able to adapt to a situation. And L, the last one, is learning, lifelong learning. I need to keep learning. So S-C-R-A-L. The five characters define the next generational graduate attributes. So given this, how do we address this? Now, one experiment which I did, I will tell that and I'll conclude. 15 minutes was the time given to me. I'm still looking at the clock. See, if you look at the Ashtanga Yoga of Patanjali, Sage Patanjali, it starts from Yam, which is a discipline, external discipline, let's say, for the want of phrase, and then goes to Niyam, which is an internal discipline. And then comes the physical exercise, Asana, and then Pranayam. So all these still Pranayam, let me put it under the physical and the mental activities. But all that we learn can be clubbed under that. After that comes Pratyahara, which is moderation in indulgence or engagement with the world and the reactions which are emoted from us. Right? So all the previous four has led to this Pratyahara. Once this Pratyahara happens, the mental entropy goes down. So focus is ascertained, which is Dharan. And if you have that Dharan, then you naturally slip into the state of communion in some state, which is Dhyan, which is the seventh. And from that state, you reach Samadhi. Samadhi is about, the actual split is Samabuddhi. So the intellect is stable, and it's able to have a say on the mind's ways of functioning. Because we know that we are the Panchakoshas, the Annamaya Kosha, that the physical body, the Pranamaya Kosha, which is the vital sheath, and then the Manomaya Kosha, which is the mind sheath. Right? So that's where we are talking about the entropies and all the disturbances. And then comes the Vijnanamaya Kosha, the intellect level, and then the Anandamaya Kosha. So given this composition, I think we have a beautiful set of tools for us to implement and make sure this works. The need of the hour is implementation. That's crucial. You know, maybe when we are meeting in Delhi, I think there's a conference in Delhi again, the Educationalist Conference. Maybe we can reshare what the implementation models have been in the respective institutions. That will be a good way of moving ahead to see how it has worked, what could be better. With that note, let me thank you all for the patient listening and thank everyone for the invitation. Om Shanti.
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आपने अपने सुंदर शब्दों में विचार व्यक्त किए अभी मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि को ईश्वरीय सौगात और प्रसाद भेंट किया जाए थैंक यू सो मच आप सभी का भी और हमारे मंचासीन मेहमानों का भी सभी ने इतना टाइम देकर और सभी को अच्छी तरह से सुना समझा तो आप सभी का भी अपने आप में धन्यवाद है अब इस सत्र का यही इसके बाद नेक्स्ट सेशन के लिए हम यहीं पर बैठे रहेंगे तो दो मिनट परमात्मा की याद से इस सत्र का समाप्ति करेंगे